शिल प्रभुपाद लीलामृत से पाठ प्रकरण 46 प्रसंगे अमेरिका में प्रचार भाग 1। यद्यपि शिल प्रभुपाद ने कहा था कि मैं लॉस एंजलिस में रुकूंगा, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अपनी यात्रा की पूर्व निश्चित योजनाओं के पक्ष में निर्णय किया। देश भर के अपने शिष्यों के कल्याण की चिंता से लाचार होकर ये संयुक्त राज्य और कनाडा के तरह इस्कन केंद्रों की यात्रा पर निकले। कनाडा के 13 इस्कन केंद्रों की यात्रा पर निकले। उनके लगभग आधा दर्जन सन्यासी शिष्य उनके साथ हो लिए। डेनवर, जून 27, 1975। शिल प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई जब उन्होंने ईट निर्मित चर्च भवन को कृष्ण मंदिर के रूप में देखा। मंदिर का हल विस्तृत था और तीसरे पहर के सूर्य का प्रकाश कमरे में उमड़ पड़ता था। प्रभुपाद ने वेदी पर आसीन राधा और कृष्ण के लघु स्वर्णिम आकारों का अवलोकन किया। वे हल के पिछले भाग में पहुंचकर व्यासासन पर बैठ गए और उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पद प्रख्यालन की अनुमति दी। ये शिष्य अपने गुरु महाराज के साथ रहने के अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए मानक औपचारिकताओं का पालन उनसे ठीक से नहीं हो पाया। फिर भी वे उत्साह से भरे थे और आह्लादित थे। श्रील प्रभुपाद ने सामने बैठकर दशरथ ओहे वैष्णव ठाकुर पद हारमोनियम पर बजाकर गाने लगा। प्रभुपाद को उसका गाना पसंद आया। जब गाना समाप्त हुआ तो प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम इसके अर्थ जानते हो? दशरथ ने उत्तर दिया, हे श्रद्धास्पद वैष्णव, हे दया के सागर, आपने सेवक पर अनुग्रह कीजिए। एक अन्य भक्त ने जोड़ा, मैं आपके चरण कमल की छाया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, हाँ ठीक है। और फिर वे गीत के कर्ता नरोत्तमदास ठाकुर के संबंध में बात करने लगे। तब उन्होंने नरोत्तमदास का एक अन्य गीत भी सुनाया, छड़िया वैष्णव सेवा निस्थार पाई छकेवा। उन्होंने कहा, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन निस्तार के निमित्त है। निस्तार का अर्थ माया के बंधन से मुक्त होना है। जब हम वैष्णव का भजन सुनते हैं तो वह मुक्ति कहलाता है। यद्यपि भक्तगण नरोत्तम दास ठाकुर और मुक्ति के विषय में पहले भी सुन चुके थे, किंतु इसी अवसर पर उन्होंने विशेष ध्यान से सुना। वैष्णव ठाकुर व्यक्तिगत रूप में उनके सामने मौजूद थे। वे आए थे उन्हें अपने मनोविकारों पर नियंत्रण करना सिखाने, संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के निमित्त उन्हें शक्ति प्रदान करने और नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में पवित्र नाम की महान निधि प्राप्त करने के लिए आस्था की एक बूंद का आशीर्वाद देने। लगभग 40 भक्तों के संबोधित करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, इस मंदिर को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या आप लोगों ने इसे खरीदा है? यह बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा स्थान है, यहाँ के भक्त खूब अच्छे हैं। हमारी प्रक्रिया बहुत सीधी है, हम अपना जीवन वैष्णव की सेवा के निमित्त अर्पित कर देते हैं और उनके निर्देश अनुसार उनके गुणों के श्रवण और कीर्तन में लग जाते हैं और पापमय कर्मों से बचते हैं, तब जीवन सफल हो जाता है। इसके लिए उच्च कुल में जन्म लेना या बहुत विद्वान होना या धनाढ्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार शुरू किए हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने किस प्रकार प्रचार करते हैं। कोई ज्यादा आडंबर नहीं है, कोई ज्यादा विशेष अरेंजमेंट नहीं है। बहुत भारी पंडाल, बहुत भारी लोक संख्या को इकट्ठा करना भी कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी ने अमेरिका से कनाडा में उनका लगभग इसमें कहा गया कि 13 सेंटर था, उनके एक अस्तम निकले और जाके पहुंचे एक मंदिर में जो अभी नया नया भक्तों ने उसको खरीदा था, एक चर्च था, ये चर्च को खरीदा गया था। उसके अंदर में जा करके प्रभुपाद जी ने दर्शन किए, विग्रह स्थापना हो चुके थे, विग्रह को दर्शन किए और बड़े प्रसन्नचित्त होकर के हॉल में पीछे जो व्यासासन रखा हुआ था उसमें जा करके बैठ गए। एक संस्था के आचार्य होने के नाते उनके व्यवहार, उनका आचरण कैसा होता है विचार करने योग्य है। तो उन्होंने आचार्य पद का भूमिका निभाते हुए उस व्यासासन में बैठ करके उपस्थित भक्त बंधु को अपने पद प्रख्यालन के लिए आदेश दिए, स्वयं बोले, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, सिखाते रहते ना। प्रभुपाद जी तो बुढ़े उम्र में इसी आंदोलन को शुरू करते हुए ऐसे कहा गया कि उन्होंने अमेरिका में जाकर तो उन लोगों को तो पता भी नहीं था, नीचे बैठकर खाना खाते ये उनको पता नहीं था, ये उनका कल्चर में था नहीं। पहली बार प्रभुपाद जी ने जब एक कुछ इकट्ठा करके धन और मिल्क पाउडर खरीद करके गुलाब जामुन पूरी और हलवा बनाए, स्वयं कुकिंग करके भोग लगाए और क्लास ली, क्लास के बाद बोले अभी प्रसाद दिया जाएगा, फीस्ट होगा, सब चेयर टेबल में बैठ के बोले नहीं हटाओ चेयर टेबल शोरूम से, बोले सो कैसे खाएंगे, नीचे बैठ के खाएंगे हम लोग, नीचे बैठ कर कैसे खाएंगे, बोले क्यों ना, हमारे यहाँ तो नीचे बैठ कर केवल कुत्ता खाता है, हम कभी नीचे बैठ कर खाते ही नहीं, हम चेयर टेबल बैठ के खाते हैं, बोले नहीं हम लोग सब कुत्ता बनेंगे। तो सबको नीचे बैठकर खाना सिखाए और उनको खाना खा करके झूठन उठा करके पत्तल उठा कर फेंकना ये भी बता रहे थे, उनका कल्चर में था नहीं, ऐसे फेंक फाक करके चले जाते हैं, पेपर में हाथ पूछ देते हैं। उनका झूठन प्लेट को भी प्रभुपाद जी को उठाना पड़ा और उनको पता थोड़ी बर्तन भी धोना पड़ता है, बर्तन को जिसे क्योंकि उसको भी धोना पड़ा। ये है आचार्य, अपने आचरण से सिखाते हैं, सब कुछ करना पड़ता है इतनी बड़ी उम्र में, उनको पता ही नहीं था। कैसे भक्तों को प्रणाम करना होता है वो भी उनको सिखाना पड़ा, उनको आता नहीं था प्रणाम करना, झुक कर प्रणाम करना आता नहीं था। एक लेक्चर में तो मैंने सुन रहा था वो प्रणाम करते हैं, उनको बोले गुरुदेव कह करके प्रणाम करो, तो उनको गुरुदेव कहना नहीं आता, गुरुदेव बोलते थे, बोलते गुरु नहीं गुरु। क्या करें, गुरु ही बनना पड़ जाता है। अब प्रभुपाद ने आचार्य के रूप में बोले कि पदधूत करने के लिए, क्योंकि भक्ति में अगर शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, भक्ति में प्रगति करना चाहते हो, द्रुत रूप में द्रुत गति में प्रगति करना चाहते हो, तो इसमें भी तीन टनिक है। जैसे आप हेल्थ टनिक खाते हैं, शरीर दुबला पतला हो जाता है, तो शरीर के लिए हेल्थ टनिक खाओ तो हेल्थ तंदुरुस्त हो जाता है ना, नहीं आप लोग खाते होंगे कई लोग, तो इसे भक्ति को बढ़ाने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए भी टनिक है, बड़े पावरफुल टनिक है, बोलते हैं तीन अवेलेबल टनिक है। और सब कोई किससे कम पावरफुल नहीं है, तीनों टनिक। ये तीन टनिक कौन है, एक है भक्त के पदधूत जल, भक्त के पदधूल, और तीसरा है भक्त के झूठन भुक्तावशेष। भक्त भुक्त अवशेष भक्त पदधुली भक्त पदधूत जल, यही तीन ही महाबल भक्ति को बढ़ाने के लिए महाबली है ये तीन। तो जानते हैं ये बेचारे भक्त अभी मंदिर स्थापना के सब कुछ किए, लेकिन उनको टनिक थोड़ा देना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, सब दुबले पतले हैं भक्ति में, शरीर में तो मोटे छोटे हैं, भक्ति में बिल्कुल मरे हुए हैं, तो थोड़ा टनिक दे करके उनको बढ़ाना है। तो स्वयं टर्निंग देने के लिए प्रभुपाद जी ने बैठ गए अपने आप, आपने बैठ करके पैर रख दिए, बोले धो करके उसको चरणाम उत्पान करो, वो सिखाना पड़ेगा उनको ना। अब बोलेंगे कैसे, वो खुद बोलते हैं क्या करें, और कोई है नहीं, कोई इस बारे में कोई पुस्तक नहीं है, कोई पढ़े नहीं, जानकार नहीं, तो क्या करें। हमारे भारतवर्ष में तो ये हमारे पास ये सौभाग्य है, हमारे संस्कृति ऐसा है, हमारे बड़ों से हम सीखे हैं, देखे हैं, जानते हैं ऐसा करना, प्रणाम करना, चरण धोना, चरणाद लेना, ये सब हम सीखे हैं, बचपन से देखे हैं। लेकिन उन विचारों का तो ये कुछ है नहीं, कल्चर वो तो नीचे बैठ के खाना ही नहीं जानते थे, तो क्या करें। तो उनको सब कुछ सिखाना पड़ता है, और उनको पैर धुलाना भी आता ही नहीं था। इसमें बोलते हैं उनको औपचारिकता बतानी था, कैसे क्या लाएं, कैसे धोएं, क्या करें, क्योंकि वो लोग तो बाथरूम में स्नान करते होंगे, पता नहीं पैर में पानी डालते होंगे नहीं डालते होंगे, कैसे करते होंगे उनको पता ही नहीं होता कि पैर धोने के लिए ब्रश फस ले आए होंगे, बोलेंगे नहीं कि वॉशिंग पाउडर लाकर लगाए होंगे साबुन फोर, बोले नहीं ये सब नहीं, ऐसे डालो, ऐसे हाथ लगाओ। प्रभुपाद जी खुद सिखाना पड़ा कैसे अपना पैर धुलाना पड़ता है। पद प्रख्यालन का विधि भी सिखाए, और उसके बाद वे चरणादों को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए इसको भी सिखाए। उस समय में फिर इस जब पद प्रख्यालन होता है तो भजन गाने के लिए दशरथ करके प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने हारमोनियम लेकर के एक वैष्णव भजन गाए, और ये वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, तो प्रभुपाद जी ने बड़े खुश हुए उसको सुनकर के, गुड बहुत अच्छा आपने गाया। तो उसका अर्थ भी पूछे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत अर्थ किए एक दो लाइन, तो प्रभुपाद जी ने बड़े खुश हुए, और उसने और एक भजन भी आड़ किए प्रभुपाद जी ने। वो भजन क्या था, छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, वैष्णव की सेवा किए बिना कोई इस भौतिक संसार की बद्धावस्था से मुक्ति पा नहीं सकता, असंभव। क्योंकि हम जानते हैं हमारे ये दुख दशा बद्ध दशा से छुटकारा पाने के लिए मुक्तिदाता जनार्दन भगवान जनार्दन के शरण में जाना होगा, भगवान की भक्ति भजन करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। लेकिन भगवान के भजन आपको कैसे पता चला, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भगवान है कौन, उनका भजन कैसे किया जाए, कैसे कैसे पता चलेगा आपको। भगवान की भक्ति तो भगवान भी नहीं देते हैं, भक्ति भक्तों से मिलता। तो इसलिए कहा गया छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई सके, कोई किसी का निस्तार तो हो ही नहीं सकता। भगवान भी स्वयं उद्घोष करते हैं, बोलते हैं कोई अगर बोलता है कि मैं भगवान कृष्ण के एकनिष्ठ भक्त हूं, तो भगवान उसको रिजेक्ट करते हैं, बोलते ना तू भक्त भक्त नहीं, बेकार बकवास करता। और कोई बोले मैं भगवान कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त हूं, ओके एक्सेप्टेड है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब अपना परिचय पूछा गया, उनका आइडेंटिटी, तो उन्होंने कहे नाहं विप्रो न च नरपति नाहं वैश्यपि शूद्र नाहं वर्णी न च गृहपति न मनस्थो जतिर्वा किंतु पृथ्वी निखिल परमानंद पूर्ण मृताभिर गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास 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 दासानुदास। स्वयं परम पुरुष भगवान होते हुए अपना परिचय जब देते हैं तो कहते ना तो मैंने ब्राह्मण हूं, ना तो शूद्र हूं, ना तो वैश्य हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थ हूं, ना जति हूं, सन्यासी हूं, ना तो कोई वर्ण में हूं, ना तो कोई आश्रम में हूं, तो आप हो कौन। बोलते हैं गोपियों के भर्ता, गोपियों के पालनकर्ता, उनके स्वामी पति जो नंदनंदन कृष्ण है, गोपी भर्तृ उनके चरण कमल के जो सेवक है, दास है, उन दासों के दासों के दासों के अनुदास हूं। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु का उक्ति है, उन्होंने अपना परिचय में ऐसा कहते हैं। जब उनको भगवान जब उनको इसी पोजीशन में रखते हैं तो हम लोग को कैसा पोजीशन रखना चाहिए, कोई सोच विचार कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक हम भक्तों की सेवा नहीं कर पाए, भक्तों को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो कस्मिन काले भगवान को प्रसन्न करना तो स्वप्न में नहीं सोच सकते, हो नहीं सकता। तो बहुत आवश्यक है भक्तों को प्रसन्न करना, बहुत ही आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद को पार्क में ले जाने के लिए डेनवर मंदिर के एक मित्र ने अपने लिंकन कॉन्टिनेंटल कार, ये कोई कार का नाम है, कंपनी है सर, आधार दे दी थी, जो पहले प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की लोमिसन रह चुकी थी। ब्रह्मानंद स्वामी ने कार की राजसी विशिष्टताओं की ओर प्रभुपाद का ध्यान आकृष्ट किया। आजकल इंडिया में ऐसा कार है, ये कार का नाम पढ़े है तो आप लोग देखे होंगे ऑनलाइन, जिसमें उसकी शीशे को खिड़कियों का बुलेट प्रूफ होना भी सम्मिलित था। प्रभुपाद ने यह कहकर हंसे, तो क्या बुलेट लगने को भी आशंका रहती है क्या? प्रभुपाद जी को बताया गया कि ये शीशा बुलेट प्रूफ है। प्रभुपाद ने हंसकर बोला, अच्छा तो मतलब मुझे बुलेट लगने का डर है क्या? ब्रह्मानंद ने टिप्पणी की कि संसार के नेताओं को नित्य चिंता घेरे रहती है। प्रभुपाद ने सहमति जताई, भौतिक संसार में हर कदम पर विपद है। वे भारतीय राजनीति के संबंध में बात करने लगे। इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण में घोर मतभेद था। उन्होंने कहा, दोनों ही की स्थिति आपदाग्रस्त में है, मैं दोनों को भगवद गीता के आधार पर पत्र लिखने की सोच रहा हूं, क्या आप ऐसे करने की सलाह देते हैं? जब श्रील प्रभुपाद ने इस बात का उल्लेख किया कि इंदिरा गांधी समय समय पर अपनी गुरु आनंदमय से मिलने जाती है, तब ब्रह्मानंद ने टिप्पणी की कि उनकी गुरु ने हरे कृष्ण कीर्तन के विषय में अनुकूल सम्मति दी है। प्रभुपाद ने अपने सन्यासियों तमाल कृष्ण भवानंद और सत्स्वरूप से पूछा, तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मुझे लिखना चाहिए? आज रात मैंने एक पत्र का प्रारूप बनाया है, आप लोग आए और देखें, हम एक बार प्रयत्न करें। हम हर एक की भलाई चाहते हैं, हर बुराई की एक ही औषधि है, हरे कृष्ण। पर दुख सुखी न पर दुख दुखी, सभी दुख में है। भक्त सहमत हुए कि पत्र भेजना अच्छा विचार है, यद्यपि सभी को इसमें संदेह था कि राजनेता किसी के उपदेश पर ध्यान देंगे या ये पत्र पढ़ेंगे भी। तब प्रभुपाद ने डेनवर में कृष्ण भवनामृत के प्रति जनता की रुचि के बारे में पूछा। सत्स्वरूप ने उत्तर दिया, रविवार को उपस्थिति अच्छी रहती है, बहुत से लोग आते हैं। प्रभुपाद बोले, तो लक्षण अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छी पुस्तकों का वितरण होना चाहिए। प्रभुपाद ने स्वीकृति में सिर हिलाया, यह बहुत सफल रहा है, जहाँ भी पुस्तक वितरण अच्छे ढंग से चल रहा है वहाँ सफलता मिल रही है। क्योंकि लोग घोर अज्ञान के अंधकार में है, इसलिए वे उस अस्थाई जीवन को ही सब कुछ मान बैठे हैं, यह अत्यंत भयावह स्थिति है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक जीवन क्या है, वास्तविक जीवन क्या है। ये सब पार्क में पहुंचे, जो चीड़ द्विफल और बांझ के लंबे वृक्षों से भरा था। कार से उतरकर प्रभुपाद एक जलाशय के सामने खड़े हो गए। दूरी पर डेनवर का खितिज और राकी माउंटेन को श्रृंखलाएं को दिखाई दे रही थी। जलाशय से बतकें और हंसों की कां कां ध्वनि सुनाई दे रही थी। भक्तों से भरी एक दूसरी कार पहुंची और प्रभुपाद और उनके अनुयायी जलाराम के किनारे बने पक्के मार्ग पर घूमने लगे। प्रभुपाद ने टिप्पणी की, बहुत अच्छा पार्क है और बहुत दूर भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जब अपने भक्तों से मिलते हैं तो हर समय उनका दूसरे को सहायता करने के लिए विचार रहता है ना नहीं? तो जब वो बुलेट प्रूफ का बात उठा तो तुरंत, मतलब आपने सुरक्षा के लिए कोई बुलेट प्रूफ कार चढ़ता है, बुलेट प्रूफ पोशाक भी पहनते हैं आजकल, तो प्रभुपाद जी ने हंसने लगे। तो उनमें उनके शिष्य ने कहे कि आजकल तो बड़े बड़े पॉलिटिक्सियन राजनेता तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत भारत के दो महान नेताओं का नाम उल्लेख किए और उनके जो भयावह स्थिति के बारे में प्रकाश किए। देखिए, ये भौतिक संसार एक ऐसी स्थिति है, सोचने में बड़े गजब लगता है, जो जितने बड़ा बनेगा वो इतने ज्यादा भयभीत होगा, लेकिन फिर भी हम छोटे बनने कभी नहीं चाहते हैं, हमेशा बड़ा बनना चाहते हैं, भय से बचना चाहते हैं और बड़ा बनना चाहते हैं। उत्पटांग बात नहीं, हर व्यक्ति को अच्छे तरह से पता है जो जितने पोस्ट पावर पोजीशन में जाएगा उनको इतना भयभीत होना पड़ेगा। एक छोटा सा नमूना देखिए, सभी हम लोग धन के पीछे विकल है ना, नहीं सच्चाई तो ही है ना। तो ये धन को इकट्ठा करने का क्या कोई आसान काम है क्या? कितने परिश्रम करना पड़ता है, कितने तकलीफ उठाना पड़ता है, कितने कष्ट सहन करना पड़ता है, इतने दुख उठा करके धन को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद अब दुख बहुत सहन करके धन इकट्ठा किए, सुख से नहीं कर पाएंगे, और जिस समय इकट्ठा किए उसी समय से असली दुख शुरू होगा। अभी धन जब हाथ में आया ना, अब चिंता बढ़ा, अब कहां रखूं, इस बैंक में रखूं गड़बड़ता हो जाए, गवर्नमेंट का नजर रहता है इस बैंक में, नहीं घर में रखूं, अलमीरा में रखूं, तिजोरी में रखूं, नहीं ये गदरेज पतला है उसका गैस तो और मोटा और रखूं, इसमें सिक्योरिटी है कि नहीं, गनमान है, कितने चिंता रहता है कि रखूं कहां धन को। अरे लाओ, लाता था क्यों, जब नहीं था कोई रखने का चिंता ही नहीं था, घर में ताला कोलब सिक्योरिटी नो प्रॉब्लम। जिस दिन से धन आया उस दिन से इतने सारे टेंशन बढ़ जाएगा, उनको लाने में दिक्कत, लाकर रखने में दिक्कत, रख करके खर्चा करने में और दिक्कत, 100 बार सोचना पड़ता है करो ना करो, 50 लोग ये मांगने आते हैं, डोनेशन वाला आते हैं, ये कहने वाला आते हैं, ये परेशानी बढ़ गया, वो नहीं था कोई नहीं आते थे, धन आ गया तो लोगों का आना शुरू हो गया, बहुत आकर बातें करते रहेंगे, और बाई चांस मिस यूज हो गया कि चोरी हो गया तो दुख का कहना ही क्या है ना, ना? तब तक आप लोगों से पता है दुख कैसा होता है ना, ना? जब बड़ी दुख से कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन ऐसे चोरी हो गया, वो जाएगा भी ऐसे। हाँ, चाणक्य पंडित कहते हैं अपना असली धन क्या है, वो कहते हैं जिस धन को हम परिश्रम करके कमाते हैं, खुद तो भोगते नहीं उसको, उसको संचय करके रखते हैं ना, नहीं अर्नेस्टली सब संचय करके रखते हैं ना, बहुत कम खर्च करते हैं नामुमकिन, बाकी सारे सेविंग सेव करते हैं, सेव जो आपने गाड़ी कमाई को जो कष्ट में उपार्जित किया हुआ धन को जो सेविंग करते हैं वो किसके काम में आएगा, आपने काम में तो नहीं आएगा, क्योंकि आप तो घर जमा करना जानते हैं, आप तो आपके लिए तो इसको उपयोग नहीं करेंगे, तो आप बोलते हैं नहीं मरने के बाद मेरे लड़का मेरे परिवार वो करें, क्या गारंटी है वो करेंगे, कोई गारंटी है? आजकल तो बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए बहुत सारे नियम कानून है, और कुछ ऐसे कानून पूरा नहीं हुआ तो पैसा गया, आपको नहीं मिलेगा, आपने संचय करके रखा लेकिन आप खाता कलम में आपका मालिकाना सब तो रहेगा लेकिन आपको मिलेगा नहीं, और कोई खा लेगा उसको, पता नहीं किसके हाथ में जाएगा, है ना। और अगर अगर परिवार वालों को मिलेगा, आपके सामने परिवार वाले आपके धन को अगर दुरुपयोग करते हैं आप दुखी हो जाते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, और आपके ऑप्शंस में कैसे उपयोग करेंगे, कैसे आप दुखी हो। तो मतलब जो धन आप कमाते हैं वो आप का नहीं है, वो और कोई लेगा उसको, वो पता नहीं कौन लेगा उसको, पता नहीं। तो बोलते हैं अच्छा था ये धन अगर मेरा नहीं तो मैं रखूंगा नहीं, सेविंग नहीं करूंगा, सारे मैं खा लूंगा, सब खर्चा करके खा लूंगा फिस्ट करके। बोले तू फिस्ट करके खाएगा, तेरा शरीर में डालेगा, तेरा शरीर का मालिक कौन है? शास्त्र कहता है तेरा शरीर जब खूब मोटा तगड़ा चर्बी वाला होता है तब सियार और गीद वो लोग सोचते हैं कि अगर मरेगा हमारा 4 महीना का भोजन होगा, तो वो सोचते हैं कि हमारा हम ही मालिक बनेंगे उसका, और कौन होगा। ये शरीर के शास्त्र में 3 अंतिम स्थिति बताया गया, एक तो है कीड़ा, एक तो है मल और एक है भस्म। तो ये शरीर तो आपका है नहीं, तो उसमें डालते तो मतलब आपका धन हुआ नहीं, वो तो बेकार जाएगा दूसरे किसी के काम में। तो फिर करूं क्या? मैं भोग करके भी मालिक नहीं बन पाया, रख कर भी नहीं कर पाया। और बोले नहीं मैं मकान बाड़ी ये सब बनाऊंगा, ये सब करूंगा, खर्च कर प्रोजेक्ट बनाऊंगा। बोले प्रोजेक्ट बनाएगा, प्रोजेक्ट को मिसिल हो जाएगा, तू भी मर जाएगा, तू उसे भी नहीं कर पाएगा, तो भी तो तेरा ही नहीं रहेगा। जिन एसेट को तूने खरीदा, इस एसेट का मालिकाना सत्व जब तक तू हो तब तक रहेगा, उस मरने के बाद में तुरंत कौन लेगा पता नहीं, तुरंत केस शुरू हो जाएगा। अगर 2 लड़के हुए उनमें झगड़ा हो जाएगा, लड़की होंगे उनमें भी झगड़ा हो जाएगा। आप देखे होते हैं संसार में कैसे होता है, तब तुम कैसे कितना दिन का मालिक तू बनेगा। तो इस प्रकार विचार करके पंडित चाणक्य कहते हैं आपका वो धन है जिसका ऊपर आप का करके कह सकते हैं। ये किस धन पर? जिस धन को आप अपने हाथ से डोनेशन दे दिए, दान दिए, तो आपका नाम लिखित रूप में रहेगा कि आपका ही धन आपने दान दिए। केवल इतने धन का मालिक आप है, बाकी कोई धन का मालिक आप नहीं। तो इस प्रकार जो जितने बड़े होना चाहते हैं, चाहे धन इकट्ठा करे, चाहे बड़े पोस्ट में जाए, क्या बड़े पोजीशन प्राप्त करे, किसी प्रकार से बड़े होगा तो इतने भय उनको घर के रहेगा, इतने भयभीत होंगे। और भय से बचने के लिए इतने भारी प्रयास करना पड़ेगा, है ना। और जो छोटे रहते हैं, गरीब बिल्कुल कुछ है नहीं, तो उनके लिए कोई भय की चिंता नहीं। ये सबको अच्छी तरह से जानते समझते हुए भी हम हमेशा प्रयास करते हैं बड़े होने के लिए और भय से बचने के लिए, ये दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए अभी सोचते हैं कि भारतीय ये दो नेताओं को पत्र लिखेंगे, उनसे बात भी करते हैं, बोले हम पत्र लिखना चाहिए। लेकिन ये डाउट है कि पत्र लिखने से सही में पढ़ेंगे या नहीं, उनके पास पहुंचेगा कि नहीं। सही बात है, उनके पास टाइम कहाँ है ये पढ़ने के लिए। तो ये स्थिति है। तो ले दे करके प्रभुपाद जी ने जब प्रचार कर रहे थे तो कितने आसान से अपने शिष्यों के साथ डीलिंग करते हैं, हर प्रकार से उनको पूछते हैं बताओ क्या करना चाहिए, ऐसा है क्या, कभी हंसी करते हैं उनके साथ, अपनापन करते हैं, इतने करीब से जाकर उनके साथ बातचीत करते हैं। एक उनके गुरु हैं, आचार्य हैं, उनको सब प्रकार मार्गदर्शक उपदेष्टा होते हुए कुछ नहीं जानते, गंड मूर्ख हैं, उनको हर प्रकार से पहनना नहाना धोना तिलक करना खाना पीना सब कुछ सिखा, जैसे बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन फिर भी इतने मित्र की तरह, इतने दोस्त की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ वार्ताव करते हैं। इसी कारण से तो उनके हृदय को जीन पाए, इसी कारण से इस गोरे लोग जो विदेशी बड़े बड़े लोग प्रभुपाद जी के प्रति इतने नौछावर कर दिए अपने आप को। ये भारतवर्ष की एक कथा है, सत्य घटना है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके पिताश्री का नाम था मोतीलाल नेहरू। उन्होंने एक उनके जमाने में बहुत भारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, और उसी जमाने में करोड़पति थे वो। इलाहाबाद में आधा संपत्ति तो उनका ही है, मोतीलाल नेहरू का। तो उन्होंने तभी, क्योंकि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश ने पूरे भारत को राज शासन कर रहा था, तो उन्होंने एक विदेशी नौजवान को अपने घर में सर्वेंट रखे थे, उसको 10,000 रुपया देते थे तभी जमाने में। तभी जमाने 10,000 रुपया मतलब आजकल के जमाने 10 लाख से भी और 20-25 लाख होगा शायद, इतने भारी अमाउंट देते थे। और क्या ड्यूटी करता था, क्या उनके सेवा था, दिन में 2 बार वो सैल्यूट मारता था, प्रणाम भी नहीं करता था नीचे झुक करके, वो चेयर में बैठता था गेट पर, अपने कमरा में रहता था, जब मोतीलाल नेहरू आते थे ऐसे सैल्यूट मारता था, जब जाते थे एक सैल्यूट मारता था, दिन में 2 बार खड़े होकर सैल्यूट मारता था। इसके लिए उनका तनख्वाह कितना था, 10,000 रुपये। अगर ऐसा पोस्ट मिले कौन छोड़ेगा कोई काम नहीं, दिन में 2 बार हाथ, 2 हाथ भी नहीं जोड़ता कि झुकता भी नहीं, खड़े खड़े हाथ उठा दे 10,000 रुपये। और उसी की प्रणाम को लेकर उसकी इसी काम में इस प्रकार उनको अपॉइंटमेंट करके मोतीलाल नेहरू इतने गर्वित होते थे, जा करके अपने बड़े बड़े दोस्तों के बीच में कोर्ट में बैठकर बोलते, अरे सारे भारतवर्ष को जो विदेशी लोग ने शासन कर रहे हैं नौकर बना के रखे हैं, मैं उनमें से एक विदेशी को मेरे नौकर बना के रखा। अच्छा हाँ, ऐसे थोड़ी मैं नौकर बना के रखा हूं, चलो देखो। और कोई कोई बड़े बड़े लोगों को साथ में लेकर जाते थे, वो खड़े होकर सैल्यूट मारता, बोले देखा मुझे सैल्यूट मारता, विदेशी होकर मैं सैल्यूट मारता, कितने देना पड़ता है उसके लिए, 10,000 देता एक सैल्यूट के लिए, 10,000 देता उसके लिए भी इतना खर्च करके वो अपने गर्वित होते थे। और कुछ नहीं कहता, जिस दिन बोलेंगे 3 बार सैल्यूट करो साथ चला ना जाए, डरते थे 2 सैल्यूट के 10,000 रुपया, इसमें डरते थे सर कुछ फिर बार्गेनिंग ना करे। और प्रभुपाद कहते हैं कि देखो मैंने तो एक नया पैसा नहीं देता हूं आपको, और एक नहीं हजारों नवजुवक पढ़े लिखे, युवक नहीं युवती विदेशी सैल्यूट मारते नहीं, दंडवत प्रणाम टट्टी पिशाब उठाने के लिए तैयार, कोई पैसा वैसा नहीं देता मैंने आपको। किस लिए? केवल आपने व्यवहार, अपने उनके साथ जो प्रेम है, जो ममता है, इस प्रकार से उनके हृदय को जीते थे, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता था, सब कुछ करने के लिए। विदेशियों की बात क्या, भारतवर्ष में भी जो कुछ महानुभव ने प्रभुपाद जी के संग प्राप्त किए हैं, उनके आशीर्वाद को, उनके आशीष को, उनकी कृपा को प्राप्त किए हैं, उन लोग का जीवन में हम आजकल भी देखते हैं, प्रभुपाद का नाम सुनते ही खड़े हो जाते हैं। ये चीज प्रभुपाद ने यूज किए थे, वही दंडवत प्रणाम कर लेंगे, इतने उनके समर्पित भावना रहता है उनके प्रति। तो ये देखने लायक सोचने लायक बात है। इसका कारण है प्रभुपाद जी के उनके शिष्यों के प्रति कितने उनके धरातल पर उतर करके उनके साथ इतने सामान्य व्यवहार वार्ताप आचरण करते थे और उनको सिखाते थे, तब जा करके वो सक्सेस हुए, इस संस्था को विश्वव्यापी बनाए, तभी हम अपने गंभीरपन देखा हम गडाउट, इतने कड़ापन रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जहां पर जितना जिस प्रकार की डोज आवश्यकता है, इस प्रकार आचरण व्यवहार वार्ताव करो, तब जाकर जनमानस को आप जीत पाएंगे, सम्मिलित कर पाएंगे। जब इतने आसान नहीं बना पाएंगे अपने आप को, तो सभी के बस में कैसे होगा। कल आपने पढ़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे, लाखों लाखों जन साधारण पागल होकर पीछे भागते थे सब छोड़ छाड़ करके। खैर ये तो भगवान थे, उनके बाद से हम तुलना नहीं करेंगे, लेकिन ये भगवान के भक्त देखिए, अपने सरलता, अपने साधन, अपने सच्चाई, आपने जो 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 पवित्रता है, उसी के बल पर इतने आसान से, इतने सामान्य व्यवहार करते थे उनके साथ जा करके, कि उन्होंने जब देखते थे कि हमारे सामने ये व्यक्ति एक बार अपना मित्र जैसे व्यवहार कर रहा है, लेकिन हे कितने बड़ा हो, बाप रे बाप, उनका दिनचर्या कैसा है, कब उठता है, कब सोता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या बोलता है, किस प्रकार के व्यक्तित्व है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जैसे अपने मित्र की तरह व्यवहार करता वार्ता, इसको सोच करके वो तनु छावर हो जाता है। यही तरीका है। अगर हमको प्रचार में सफलता प्राप्त करना होगा तो यही कौशलता अपनाना पड़ेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए उन्होंने जो प्रचार शुरू किए, संन्यास लेने के बाद महाप्रभु सबसे पहले टारगेट किए, पिचिंग का मिशन जब शुरू किए, नवदीप से पुरी पहुंचे, पुरी में जगन्नाथ दर्शन में गए। जिस दिन दर्शन में गए उनको तो प्रचार ही धर्म था, प्रचार ही सार था। गए जाकर के भगवान जगन्नाथ के अल्टर पर सीधा गर्भगृह तक दौड़ गए। जगन्नाथ जी को शायद आलिंगन करना चाहते थे, वो जाकर के वहां सेंसलेस हो गए, पूरा मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। और वहीं पे मूर्छित अवस्था में उनका भेंट होता है सार्वभौम भट्टाचार्य से, दी ग्रेट स्कॉलर, राज पंडित और हेड प्रीस्ट था। मूर्छित अवस्था के रूप उनको दिखाए, शारीरिक विकार को देखा उन्होंने, उनको अपना घर में लेकर गया, उस मूर्छित दशा में ही उनको मूर्छित कर दिए। अगर जगे होते तो क्या कर देते उनका, ऐसे मूर्छित किए हो तो तूला ला करके देख रहा था नाक के पास, देख करके वो हवा चलता है कि नहीं नाक से सांस पास, डेड बॉडी है ना, जीवित शरीर है, देख रहा था, देख करके पड़ता था कब उठेगा, कब तक कोमा में रहेगा। 9 घंटा केवल पड़े रहे घर में, सार्वभौम तो हताश हो गया, बोला क्या करूं, 9 आवर्स कोमे में रहे, और 9 घंटे के बाद कोई कोमा से उठेगा मतलब सलाइन चलेगा कि पता नहीं किसी क्या क्या उपचार करेंगे, कुछ नहीं, 9 घंटे के बाद जब उठे 1 सेकंड में जंप किए जाके छात में लगा सर, हरि बोल कहकर, वो देख रहा था क्या है ये अद्भुत आचरण, अद्भुत भाई वो क्या रहा है जो और उनके साथ ही जो थे बोले ये तो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल एवरीडे हैपनिंग लाइक दिस। सर्वों का अपने ज्ञान, अपने पंडिताई, उनके पढ़ाम सीमा सब चटनी होकर निकल गया, बोला कुछ काम नहीं करेगा ये, वो क्या रहा है जो मेरा बुद्धि समझ कुछ काम नहीं कर रहा है ना। तो बाद में अपने ऐसे नम्र बने सार्वभौम के साथ व्यवहार से, इतने नम्र बने कि सार्वभौम बोला हो हमारे गांव के आदमी है, हमारे बिरादरी है, तो संन्यास ले लिया इतने कम उम्र में, तो उनको थोड़ा हेल्प करना चाहिए। तो उनको पढ़ाने के लिए विचार किया, बहुत बड़े टीचर थे उन्होंने, और ऐसे स्टूडेंट बने भगवान ने कि सार्वभौम भट्टाचार्य क्या अभी तक मेरे टीचरी काल में, मतलब शिक्षक जितने समय मेरे शिक्षक जीवन में ऐसा ओबीडियंट स्टूडेंट मुझे मिला नहीं, कि ऐसा ओबीडियंट स्टूडेंट है, बिल्कुल चुप बैठा है, एक भी झपकी नहीं लगा रहा है, सुन ही रहा, बिल्कुल सुन रहा, इतने नम्र छात्र बने। केवल नम्रता के कारण सार्वभौम को बोल्ड आउट कर दिए, उनका सारे बुद्धि बुद्धि खत्म, एक बार बदल गया, ऐसे प्रकार से बदला। वही उपाय अपनाए थे बनारस में प्रकाशानंद के सामने, इतने अपने आप को नीच और नम्र बनाए, वो लोग दौड़ कर आए, हाँ 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 अरे आप सन्यासी यहां क्यों बैठ गए, चलो चलो बैठो अपना पास में, अपना पास में बैठो। तो वो लोग भी उनको बोल रहे थे, बोले आप सन्यासी हो, फिर अपना संप्रदाय के सन्यासी हो, कर क्या रहे हो, सड़क पर जाकर हाथ उठाकर नाचते हो, ये थर्ड क्लास का, इसे नीच कर्म है। अरे जो बेशरम पागल है वो लोग नाच करते हैं जाकर के सड़क में, गाते नाचते, तुम गंभीर होना चाहिए, सन्यासी वेदांत पाठ करो, ये क्या है, सन्यासी के धर्म कर्म ये होता है क्या। महाप्रभु बोले सर ईसा आप जो बताए तो आप तो बड़े आदमी हैं, बात तो आप सही कहते हैं, लेकिन मैं जब सन्यास लिया मुझे गुरुजी ने मुझे तभी डांट कर बोल दिए थे, बोले मूर्ख तुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, तू क्या पढ़ेगा वेदांत, इसीलिए तो पढ़ता नहीं मैंने, मूर्ख हूं मैंने। अच्छा पढ़े लिखे नहीं ना। उनका नवदीप पे जो महाप्रभु रहते थे उनका नाम क्या था, निमाही पंडित, अब क्या बोल रहे हैं, मैं मूर्ख था सरासर छूट नहीं पढ़ता है बोलना, ऐसे ही समय पर आवश्यकता अनुसार करना पड़ता है, बोले मूर्ख हूं। अच्छा नहीं ना, कुछ नहीं जानता, एक श्लोक तो बड़ा मुश्किल से कंठ कर पाया मैंने, याद कर पाया। अभी गुरुजी ने बोले थे, बोले चलो कुछ नहीं करो तो जाकर के बोले महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहना, वही करता रहता हूं। बोला हरे कृष्ण मंत्र जप करो बैठ करके, आराम से आसन लगाकर बैठ कर जप करो जैसे आप लोग कर रहे हैं। तुलसी सान उठ, ये नौटंकी क्या कर रहा, सड़क पर घूम कर हाथ उठाकर नाचता रहता है गाता रहता है, दिस। बोले मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता हूं, मैंने जप कर रहा था बैठ करके गुरु जी ने जो मंत्र दिए, लेकिन पता नहीं मुझे भी पता नहीं क्या हो रहा है मेरा, वो मुझे उठ करके नाचने लगा गाने लगा ऐसी होने लगा। नरे तो पागला में है, तो जाके पूछा नहीं ये क्या गड़बड़ करती, हम पूछा था जा करके गुरुजी से दोबारा मिला, मिलकर पूछा गुरुजी ना क्या हुआ, ना किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तारा बल, जपिते जपिते मोरे करीला पागल, उसको ये क्या मंत्र दे दिया, मैं जप करता हूं तो पागल हो जाता हूं, मुझे पता नहीं चलता क्या होता मेरा, उठ के नाचना रखता हूं गाते रहता हूं रोता रहता हूं ना। फिर गुरुजी ने क्या बोले, गुरुजी ने बोले क्या ये जप मंत्र जप करके तू इस प्रकार पागल होता है, अरे यही तो उसका सिद्धि अवस्था है, अभी हमारा नहीं हुआ है तेरा हो गया हम यही रास्ते में पड़े हुए हैं अभी तक पहुंचे नहीं, आप पहुंच गया, अरे बाप रे बाप आपका तो मंत्र सिद्धि हो गया, बोलते हैं कि मंत्र का ही सिद्धावस्था, तो गंभीर हो गए कुछ बोले नहीं, बोले और एक श्लोक मुझे सिखाते मैं इसको जानता हूं, अर्थ तो मुझे आता नहीं मूर्ख हूं, आप लोग बड़े बड़े पंडित है वेदांती है दांत है कि नहीं पता नहीं, तो अर्थ कर सकते हैं आपने न, बोलिए सड़क कर खड़े क्या संस्कृत श्लोक बोलेगा ऐसे ही अर्थ करेंगे अभी उसको। तो एक श्लोक बोले, बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, इस कली युग में और कोई उपाय नहीं कोई गति नहीं कोई उपाय नहीं, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही सार है। ये जैसे श्लोक पढ़ दिए, बोले उसका अर्थ क्या है, आप लोग पंडित थोड़ा बताएंगे, मर गए आप क्या कर, जब बताए तब मरे नहीं बताए तब मरे, आप करें क्या, अरे हजारों लाखों के सामने मंच के ऊपर बैठे हैं चांदी के आसन पर, अब जब श्लोक के अर्थ नहीं कर पाते तब तो मरेंगे, मूर्ख है इतने आपने आपको इतने बड़े पंडित करके बैठा है, अब जब अर्थ कह दिए तब मरे तो क्या कर रहे हरिनाम करना चाहिए यही एक उपाय है। इसी प्रकार उनको पटकाए तो बेचारे करे क्या है ना, नहीं तो यही है प्रचार की सफलता के कुंजी है नम्रता, ह्यूमिलिटी इज द ओनली एसेंस, सच्चे पावरफुल टेक्निक है। तो भगवान ने किए प्रभुपाद जी ने कहते जो भक्त वही उसी को अपनाते हैं, और सचमुच जैसे इसमें कहा गया कि भक्तों की सेवा किए बिना कोई किसी का कल्याण हो नहीं सकता, तो सेवा करने के लिए चलो हमको भी तो करना पड़ेगा, हमारा जब कल्याण चाहते हैं सेवा कर। सेवा करने के लिए सबसे प्रथम क्या आवश्यकता है जानते हैं, नम्रता। आपने आपको छोटे नहीं करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे, जो आपने बड़ा है तो बोलेंगे सेवा मुझे कर, मैं तो थोड़ी करूंगा, जब तक सीनियरिटी फीलिंग रहेगा अपने अंदर तो सेवा नहीं कर सकते। सेवा करने के लिए दी फास्ट एंड फॉरमोस्ट आवश्यकता है कि आपको जूनियर बनना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा, नम्र नीच बनना पड़ेगा, तब तो जा करके। अब जब नीच होंगे तो फिर अपना मान सम्मान क्या है, नीच व्यक्ति का कोई मान सम्मान होता है, कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा कह दिया मैं उनसे बात करूंगा, कभी नहीं जाऊंगा, नो फिर उनके पास नहीं जाऊंगा, मेरा एक स्वाभिमान है। जो अपना स्वाभिमान को देखेगा तो फिर वो सेवा नहीं कर पाएगा, सेवा ले सकता है, अपने अहंकार को पोषण बढ़ा सकता है, निराभिमान नहीं हो सकता, फिर सेवक नहीं बन सकता। सेवक बनने के लिए बहुत ही आवश्यकता है, अपने अभिमान को निकाल कर फेंको, अपने आप को नीच बनाओ। जो कुछ तथा कथित आपके अंदर में घमंड है कि मुझे इसे कहते हैं, इसे मेरे मजाक उड़ाते हैं, मुझे इसे करते हैं, सहलो मजाक, इसी में बड़ाई है, इसी में बड़ाई है। जितने आपको नीच करेंगे इतने आपके अंदर भारीपन बढ़ेगा। एक बैलेंस है ना, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, तराजू, तराजू में दो साइड में दो पल्ला है, कोई दो वस्तु डाले, एक वस्तु डाला तो नीचे हो गया एक साइड, एक वस्तु ऊपर चला गया। बोले वाह भाई, उच्च लोक में चला गया, कितने ऊपर है, लेकिन वास्तविक तौर पर सोचा जाए वो बेकार है, जो नीचे आया वो भारी है ना, नहीं वो तो कोई वजन ही नहीं उसका। तो जो नीच होगा वही वजनदार होगा, वो नीचे आया बिल्कुल नीचे जमीन पर रहता है, और जो ऊपर उड़ गया वो तो उड़े रहेगा आकाश, क्योंकि मूल्य ही नहीं, मूल्यहीन हो जाएगा। तो अपने आप को मूल्यहीन मत बनाओ, जितने नीचे उतरेगा, जितने अपने आप को नम्र नीच बनाएगा, इतने भारी होगा, इतने वजनदार होगा, इतने मूल्यवान होंगे, है ना। तो आज एक महान वैष्णव कवि तिरुभाव तिथि है, भगवान के जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनका आविर्भाव तिरुभाव दोनों ही समान है। आते हैं तो भगवत नाम प्रचार करने के लिए, हम लोग का कल्याण करने के लिए आते हैं, और जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। उनका तो कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, भक्तों का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु हम लोग का होता है, भौतिक लोगों का। उनका तो प्रकट और अप्रकट अवतरण होता है और तिरोधान होता है, आते हैं चले जाते हैं, लैंडिंग करते हैं फिर चले जाते हैं। यहां जब तक आते हैं हम लोग को भी उनको इसे नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ के रहने वाले, नहीं नहीं नहीं, थोड़े दिन के लिए आते हैं, थोड़ी यहाँ के बन जाएंगे, उनका रेसिडेंस जहाँ है वहाँ है, भगवत धाम से आते हैं। तो नरहरि सरकार, वही नरहरि सरकार है ना जो लोचनदास जी के गुरु जी हैं, पढ़ा नहीं, लोचनदास ठाकुर जो चैतन्य मंगल लिखे हैं, उनके मुकुंदा नरहरि यही दो भाई थे ना, उनके पुत्र रघुनंदन थे, वही है ना नरहरि, चैतन्य महाप्रभु खंडवासी हैं, खंडवासी वैष्णव में महाप्रभु के गण में उनका गणन आता है, नरहरि मुकुंदा सिरहुनंदन खंडवासी वैष्णव में आता। ये दोनों भाई थे, दोनों ही डॉक्टर थे, कविराज थे, कविराज मतलब एक हमारा भाषा में कविराज मतलब जो वैद्य है, और कविराज मतलब तो पोएट भी, बड़े पोएट है, कवि है, कवियों के राजा। तो ये दो भाई दोनों पोस्ट में थे, मुकुंद थे सचमुच कविराज, वैद्य थे, और उनके बड़े भाई वो कविराज थे नरहरि। तो महाप्रभु ने उनको दोनों को दो प्रकार की सेवा दिए थे, वो तो वैद्य थे और उनको बोले थे शादी करने के लिए, मुकुंद को नरहरि को बोले शादी मत करो, उन्होंने रहे थे। तो नरहरि ने लोचनदास ठाकुर उनको शिष्य बनाए थे, जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखे थे उनके आदेश से। तो ऐसे नरहरि ठाकुर इतने उच्च कोटि के गौर पार्षद थे, भक्त थे, हमेशा उनके मन प्राण में गौरांग महाप्रभु रहते थे। जब भी व्रत यात्रा के समय भक्त लोग आते थे नीलाचल में, तो नरहरि अवश्य आते थे। तो उन्होंने रघुनंदन को भी अपना शिष्य बना करके शिक्षा दीक्षा दिए थे रघुनंदन ठाकुर को। ऐसे कहा गया है कि रघुनंदन ठाकुर नरहरि सरकार जब उनका जब उन्होंने तिरोधान किए तो पहले से बता दिए थे, जब खेतड़ी उत्सव हो रहा था नरोत्तमदास ठाकुर के, उसमें भाग लिए थे उन्होंने, गए थे और जो वापस आए सबको बोल दिए कि ऐसा ये जो तिथि आज की तिथि आता है आप पहले से हरिनाम संकीर्तन करो। वो बोले मेरे लिए ये समाधि बना करके रखो यहाँ खुदाई करके, अब मैं वहीं समाधि लूंगा, स्थिति में पहले से बता दिया उन्होंने, बोले मुझे स्थिति में जाना है। तो पहले से उनके लिए तैयारी करके कीर्तन किया गया, महा संकीर्तन के साथ में उस स्थिति में उन्होंने समाधि लिए, समाधि दे दिया गया। और समाधि लेते समय बोले कि हर साल इसी तिथि में, नरहरि सरकार ने रघुनंदन को बोले, हर साल इस तिथि में मेरा जो श्राद्ध तिथि है, मेरे समाधि में आकर के ये सब आइटम मुझे ठीक से भोग लगाना, मैं आकर प्रसाद लूंगा आपसे, आप भोग लगाना। आजकल तो कई ऐसे आदर्श महापुरुष होते हैं, महात्मा बोलते हैं कि शरीर तो 2 रुपया का भी कीमत नहीं है, मर गया जो शरीर उसमें क्या कीमत है, उसको तो बेकार, उनके लिए इतने खर्चा करो, 1 करोड़ रुपया खर्च करो समाधि बनाना, इतने खर्चा करना बेकार है, मूर्खता है, उसे तो ऐसे फेंक देना चाहिए, उसने बेकार कहे काहे को मिस यूज करें अर्थ का। लेकिन हमारा वैष्णव फिलोसफी में ऐसा नहीं कहा जाता। ये नरहरि सरकार उनके उज्जवल उदाहरण है। उन्होंने जो समाधि लिए थे, 1 साल के बाद जो बरसी आज की तिथि है, तिरुभाव तिथि जिस दिन था, उस दिन रघुनंदन ठाकुर ने गुरु जी का आदेश पालन करके छोटा सा समाधि था, उनको कोई बड़ा नहीं था, बनाए थे उस समाधि के जो मंदिर छोटा सा बनाए थे घर, उसके नीचे समाधि था उनका, उसमें कई प्रकार के आइटम बना करके भोग द्रव्य और जाकर के नरहरि ठाकुर के सामने, समाधि के सामने रखे, कबाड़ बंद करके बाहर आ करके उनको ध्यान करते थे कि गुरु जी आपके आदेश के अनुसार मैं, आपके आज वार्षिक तिथि है, श्राद्धोत्सव है, मैं आपको भोग अर्पण करता हूँ, कृपा करके स्वीकार कीजिए। तो किसी ने था बोला क्या इतने देर हो गया कर रहे हैं कबाड़ बंद करके, वो अपने कीर्तन कर रहे थे, रघुनंदन जाकर कबाड़ खोल दिया, देखा कि नरहरि ठाकुर बैठ करके खा रहे हैं, वो बैठ करके खा ही रहे थे, प्रकट दिखा गया, समाधि से ऊपर उठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो इसलिए हम ऐसे नहीं समझते हैं कि उनका समाधि तो वो तो गए कहां, ये समाधि बेकार, नहीं नहीं, जो वैष्णव लोग होते हैं उनके समाधि में वो रहते ही हैं, रहते ही हैं। अगर हम इस प्रकार से भावना से उनको प्रार्थना करें, सेवा करें, तो उनके कृपा, उनकी सेवा प्राप्त हो सकता है। तो अगर कोई बड़े महापुरुष को आप देखे नहीं, जाने नहीं, तो कोई दुख की बात नहीं, उनके समाधि में जाकर भी उनको प्रार्थना कर सकते हैं, उनको पुष्प भोग आदि अर्पण भी कर सकते हैं, और अगर आप सच्चा भाव से करेंगे वो स्वीकार भी करेंगे, कर सकते हैं, आशीर्वाद उनको प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जो ओरिजिनल समाधि है वृंदावन में, अभी भी कृष्ण बलराम मंदिर के सामने विद्यमान है, और यहाँ जाकर प्रार्थना कीजिए, वो बिल्कुल बैठे हैं इधर, सुनते, सब देखते हैं, बोलते नहीं कुछ। अगर आप ऐसे स्थिति पर आकर बोलें तो आपको बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे महाप्रभु के जो अनुयायी होते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, उनका ऐसे आचार व्यवहार होता है। श्रील प्रभुपाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।